लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर डेविड सोसन बागे के साथ वे वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। कलीसिया में एक साथ होने का एक विशेष महत्व है। कलीसिया की शुरुआत ही एक समुदाय के रूप में हुई है, जिसका संचालन पौत्र आत्मा करते हैं। प्रेरित चरित्र में हम कलीसिया की एकता का एक उत्तम उदाहरण पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस ने सिनट का आह्वान कर कलीसिया में एक साथ चलने का प्रोत्साहन दिया है। इस आह्वान के आधार पर सबसे पहले धर्म प्रांत स्तर पर कलीसिया की एकता का मूल्यांकन किया जा रहा है, जहां पल्ली समुदायों में विश्वासों को एक साथ चलने का महत्व समझाते हुए उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि पल्लियों में सामुदायिक भावना नहीं होने के कारण लोगों में गिरजा जाने या पल्ली के क्रियाकलापों में भाग लेने की रुचि घट जाती है और वे धीरे धीरे अपने आप को सब कुछ से दूर कर लेते हैं। इटली के कलाब्रिया प्रांत के शहीद संत थियोडोर पल्ली के पल्ली पुरोहित, खूंटी धर्म प्रांत के श्रद्धे फादर डेविड सोसन बागे, जो डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के बाद दूसरी पढ़ाई करते हुए पल्ली में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका कहना है कि पल्ली समुदाय को मजबूत बनाने के लिए पल्ली को अपना समझना, पल्ली का अंग होना और ईश्वर के वचन को सुनना आवश्यक है। तभी हम सिनट के महत्व को समझ सकते हैं और कलीसिया की एकता को भी मजबूत कर सकते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है फादर डेविड सोसन बागे के साथ एक वार्ता। उनके साथ बात कर रहे हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रद्धे फादर, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ इस वार्ता में। और इस वार्ता में आगे बढ़ने के पूर्व मैं आपके पल्ली का छोटा परिचय जानना चाहूंगी।
मैं जलदेगा पल्ली बचड़ागढ़ से मैं आता हूँ और मैं चुना हूँ, डायसिस का नाम है खूंटी डायसिस, इसलिए मैं खूंटी डायसिस के लिए फादर हूँ। तो मैं जिस पल्ली में कार्यरत हूँ उस पल्ली का नाम है शहीद संत थियोडोर, जगह का नाम है लेनो कस्टेलो, जो दक्षिणी इटली के कलाब्रिया रीजन में पड़ता है।
खुशी है कि आप भारत से हैं, लेकिन इस इटली दूर दराज देश में आकर के अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए आपने इस मिशन को जारी रखा है और आज आप सफलता प्राप्त करने के बाद पल्ली पुरोहित भी बन गए हैं, तो आपको बधाई देती हूँ। और मेरा अगला सवाल होगा, आपकी पल्ली, जो आप पल्ली पुरोहित हैं, आपकी पल्ली की अभी क्या स्थिति है?
मेरा पल्ली की स्थिति तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। मेरे पल्ली में लगभग 900 विश्वासीगण रहते हैं और अधिकांश विश्वासीगण पहाड़ी दूर इलाके में निवास करते हैं और वे लोग खेती बाड़ी करते हैं और इसलिए उनका जीवन बहुत सरल और सादगी है। इसलिए इस पल्ली के लोग बहुत हेल्पफुल भी हैं और उनकी सरलता, सरल जीवन की वजह से यहाँ काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत मिलनसार होते हैं, अच्छे हैं और बहुत सिंपल जीवन जीते हैं।
और मैं जानना चाहूंगी कि पल्ली में आप किन किन अच्छी चीजों को देखते हैं?
यहाँ के लोग बहुत, जैसे मैं कह रहा था, बहुत हेल्पफुल है ना, जैसे छोटे छोटे कामों में हाथ बताते हैं पल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष करके पुरोहितों के प्रति प्यार, पुरोहितों को रिस्पेक्ट करते हैं। जितने भी धर्म समाजी मेरे पास विजिट करने के लिए आते हैं उनके प्रति भी एक प्रकार का स्नेह प्यार वो लोग खुशी खुशी दर्शाते हैं। जो जो कुछ भी बन पड़ता है वो लोग सब कुछ अपने तरफ से हेल्प करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए इनकी सादगी जीवन और यहाँ का जो पारिस का जो वातावरण है उसमें काम करने के लिए एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलती है। हर पल्ली में चुनौतियां हैं, उसी प्रकार यहाँ की इस पल्ली में बहुत चुनौतियां हैं। विशेष करके मेरे ख्याल से जो करीब करीब 60 साल पूरी हो गए जो द्वितीय वेटिकन सभा हुई, और उस वेटिकन सभा में जो हमें जो शिक्षा मिली है उस शिक्षा को अभी हम लोग पल्ली लेवल में और धर्म प्रांत लेवल में अभी तक हम लोग पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाए हैं। इसलिए यहाँ वाला इस बारिश में मैं अभी देखता हूँ, समझता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि अभी तक जो पल्ली का विशेष अर्थ क्या है उसको यहाँ वाले के इस यहाँ के विश्वासीगण अभी तक सही रूप से नहीं समझ पाए हैं। हो सकता है उसमें हम फादरों के बीच कमजोरियां रही होगी, जिस इस वेटिकन सभा की जो शिक्षा मिली है जिसे हम लोग नहीं सिखा पाए। इसलिए बहुत बार इस पल्ली में मेरे लिए सबसे चुनौती है कि इस पल्ली का मतलब यहाँ के विश्वासगण में यही है कि एक पल्ली को एक संस्था के रूप में देखते हैं, और इस संस्था का मतलब एक सेवा संस्था, जो सेवा ले ली गई उसके बाद हम लोग पल्ली को भूल जाते हैं। और यहाँ के विश्वासगण में जो क्रिश्चियन आइडेंटिटी जो हमें बपतिस्मा के द्वारा मिली है उसको हम लोग नवनीकरण और नया रूप देने में उतना सक्षम अभी तक नहीं हो पाए हैं। इसलिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती यही है पल्ली को पल्ली समझना, और हम लोग पल्ली को बपतिस्मे के द्वारा हमें भी पल्ली का अभिन्न अंग बन गए हैं इसको समझाने में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं मेरे लिए।
श्रद्धेय फादर डेविड, आपको बहुत धन्यवाद आपके इस बहुमूल्य समय के लिए हमारे साथ जुड़ने और अपने सुंदर बातों को, सुझावों को और सलाहों को हमारे पास रखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके मिशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर डेविड सोसनबागे के साथ हुई वार्ता को सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आत्मा परम ज्योत तू ज्योति दिला, बुझे दिलों के ज्योति जला। आओ
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका जंग जारी है। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, भारत में वैवाहिक संबंध के बाहर यौन संबंध अच्छा नहीं समझा जाता, वैश्यवृत्ति भी इसके अंतर्गत है। वैश्यवृत्ति समाज में व्याप्त एक आवश्यक बुराई है। भारत के कुछ राज्यों में धार्मिक रीति रिवाजों और रूढ़ियों के कारण भी कुछ स्त्रियों को वैश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है। भारत में वैश्यावृत्ति का सबसे प्रमुख कारण गरीबी को माना जाता है। ऐसे पेशे को अपनाने वाली ज्यादातर महिला लाचारीवश ही इसे अपनाती हैं। वे सामान्यतः अशिक्षित भी होती हैं और उनके पास किसी कार्य का विशिष्ट कौशल भी नहीं होता। दुर्भाग्य से यदि ऐसी महिलाओं का सामना दलालों से हो जाए तो उनके इस पेशा में आने की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 68% लड़कियों को रोजगार के झांसे में फंसाकर वैश्यालयों तक पहुंचाया जाता है, जबकि 17% लड़कियों को शादी का वादा करके इस धंधे में ढकेल दिया जाता है। वैश्यावृत्ति जैसे सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठने एवं विभिन्न संप्रदाय काम कर रहे हैं। इसे समाप्त करने के लिए अधिनियम भी बनाए गए हैं। दिसंबर 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यौन कर्मियों के हित संरक्षण, महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार रोकने एवं वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए उज्ज्वला नामक योजना लागू की गई। फरवरी 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश के सभी शहरों में यौन कर्मियों की तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर पुनर्वास योजना तैयार करने को कहा था। इन सबके बावजूद इसे समाप्त करने के सभी प्रयास अब तक निष्फल रहे हैं। वैश्य उन्मूलन संगठनों में काम करने वालों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनके दलाल इन्हें शारीरिक प्रताड़ना देने से भी पीछे नहीं रहते, परंतु स्टीव और शीतल जैसे हमारे देश के युवा अगर इस बुराई को खत्म करने की बीड़ा उठाएं, तो अनेक लड़कियों और बच्चियों को इस दलदल से बचाया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका जंग जारी है।
स्टीव, स्टीव।
आओ शीतल, बैठो।
नमस्ते भाभी।
नमस्ते, बैठो।
भाभी, यह मेरी सपाटी है शीतल। और शीतल, भाभी के बारे में तो तुम जानती ही हो।
क्यों शीतल, स्टीव ने तुमसे मेरी बहुत बुराई की होगी, तभी तो तुम मेरे बारे में जानती हो। क्यों?
नहीं भाभी, स्टीव तो आपकी बहुत तारीफ करता है, कहता है मेरी भाभी लाखों में एक है और मेरी बहुत परवाह करती है।
हो सकता है मुझे मस्का लगाने के लिए यह मेरी झूठी तारीफ कर रहा हो।
क्या भाभी, आप भी कैसी बात करती हैं? आपकी झूठी तारीफ तो जूलियन भैया करते हैं, मैं नहीं करता।
मैं किसकी झूठी तारीफ करता हूँ भाई।
नमस्ते भाई साहब।
नमस्ते। तुम
भैया, ये शीतल है, मेरी क्लास फेलो, हम दोनों MSW साथ ही कर रहे हैं।
ओह मार्था भाई, शीतल हमारे घर पहली बार आई है, उसकी कुछ खातिर वातिर तो करो, या सिर्फ बातों से उसका स्वागत कर लोगी?
अरे नहीं भाभी, आप तकल्लुफ बिल्कुल मत कीजिए, अपना ही तो घर है, फॉर्मेलिटी मत कीजिए।
ओहो, तुमने बड़ी जल्दी इस घर को अपना मान लिया है, अच्छा लगा सुनकर। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले भी इसे तुम्हारा घर मानने के लिए राजी हैं?
हाँ, वो भी राजी हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई। स्टीव, तुम आजकल के लोग किस्मत वाले हो यार, तुम्हें डिग्री के साथ साथ जीवन साथी भी मिल जाता है। खैर वैसे कहाँ की तैयारी है?
आपको तो पता है भैया, MSW की पढ़ाई के साथ साथ हम लोग सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कल्याण के सारे कार्यों से व्यवहारिक रूप से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही अभी हम वैश्य उन्मूलन के कार्य में बिजी हैं, और उसके लिए आज हमारा ग्रुप लाल बस्ती जा रहा है।
वहाँ हम करीब महीने भर से महिला जागृति अभियान चला रहे हैं, जिनमें हम वेश्याओं को उनका अनैतिक कार्य छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर रहने और जीने के लिए प्रेरित करते हैं।
यह तो बहुत अच्छी समाज सेवा है शीतल।
फिर तुम्हें अपने काम का कुछ रिस्पांस भी मिल रहा है या यूं ही अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है?
नगर वधुओं की अपनी भी कुछ समस्याएं हैं भैया।
वह तो होनी ही है, वैसे समस्याएं क्या है?
सबसे बड़ी समस्या तो इस धंधे को छोड़ देने की है।
तो फिर वे छोड़ क्यों नहीं देती?
भाभी, वो चाहकर भी इस धंधे को अब छोड़ नहीं पाती, क्योंकि पहले तो उन्हें इस धंधे के दलाल जो उन्हें इस गलीज धंधे में उतारते हैं, वे ही उन्हें छोड़ने नहीं देते।
और अगर जैसे तैसे इस धंधे को छोड़कर दलालों से मुंह छिपाकर कहीं और जाने को तैयार हो भी जाए, तो उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाती है। आखिर वो करे भी तो क्या करे?
अरे तो उनकी समस्या ये हो गई है जो इस अनैतिक धंधे को छोड़ना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि तुम या तुम्हारे जैसे कोई समाज से इस बुराई को खत्म करा पाएंगे।
तुम कैसी बातें कर रहे हो जूलियन, कोशिश किए बिना ही किसी भी नतीजे पर पहुंच जाना न तो बुद्धिमानी है और न ही समझदारी है।
यह आपने बिल्कुल ठीक कहा है भाभी।
लेकिन तुम ये क्यों भूलते हो स्टीव, कि हमारा समाज जिन वेश्याओं को इज्जत की नजर से नहीं देखता है, अगर यही वेश्याएं हमारे समाज में न हो तो समाज में बलात्कार और हत्या में बढ़ोतरी हो जाए, हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाए।
इसका मतलब है भैया, इस कीमत पर समाज में इस बुराई का रहना तो जरूरी है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाज जिन्हें अनैतिक और गंदगी फैलाने वाला मानता है, वही अनैतिक और बुरे लोग ही समाज की गंदगी को समेटने का काम भी करते हैं, समाज का एक तरह से कल्याण ही करते हैं।
लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उन्हें, बेइज्जती और बीमारी के दलदल में उन्हें जीना पड़ता है।
आखिर सरकार ठोस रूप से वेश्या उन्मूलन के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाती है, है? क्या समाज को स्वच्छ रखना सरकार के एजेंडा में नहीं है?
सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है भैया, लेकिन आप तो जानते हैं कि सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, उसमें सभी लोग दूध के धुले तो होते नहीं, इसलिए समाज सेवी संगठन को ही यह जिम्मेदारी निभानी पड़ती है।
और पुलिस, पुलिस तो कभी कभार छापा मारकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है बस,
जबकि पुलिस की मिलीभगत के बिना यह धंधा चल ही नहीं सकता।
और ऐसे अनैतिक और चरित्रहीन पुरुषों के बिना जो वहाँ जाकर इस धंधे में अपना सहयोग देते हैं, और ऐसे आत्मविहीन पुरुष जो ऐसा धंधा करवाते हैं।
तुमने बिल्कुल सही कहा जूलियन,
इसलिए मेरा तो मानना है कि शाखा काटने के बजाय जड़ को काटना ही बेहतर होगा, जड़ को।
आपका कहना सही तो है भैया, लेकिन जिस पेड़ की जड़ को आप काटने की बात कर रहे हैं, उस जड़ में बड़े बड़े सफेद पोष छिपे बैठे, उस हालात में जड़ को काटने की हिम्मत कौन करे? उस जड़ की ओर कोई इशारा भी नहीं करना चाहता।
लेकिन हमने सोच लिया है भैया, हम उस जड़ को जरूर काट कर रहेंगे। देश से इस गंदगी के धंधे को भले ही दूर ना कर सके, लेकिन अपने शहर से तो इस धंधे को जरूर दूर करके ही रहेंगे।
क्या तुम लोगों को अनजान खतरे से डर नहीं लगता?
मार्था, यही बात मैं भी इनसे कहने वाला था। देखो स्टीव, यह इंसान के हाथ में होता है कि वह अपनी जिंदगी चाहे तो शांति से बिताए या फिर किसी मुसीबत को निपटा दे।
भैया, आप तो हमारा हौसला ही तोड़ रहे हैं।
मैं तो हकीकत सामने रख रहा हूँ।
हकीकत तो हम भी जानते हैं भैया, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि सच्चाई से डरकर हम समाज सेवा का यह काम छोड़ दें।
तुम सही कहते हो स्टीव, अब संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष जीत किसे मिली है।
मैं तो भाई तुम्हारे काम की सफलता की कामना और उसके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ।
जीजस तुम दोनों को इस पवित्र काम में आशीष देगा।
मार्था, क्या हुआ स्टीव को?
कुछ नहीं भैया, दलालों के गुंडों ने स्टीव के साथ मारपीट की है।
अस्पताल में ड्रेसिंग के बाद डॉक्टर ने घर भेज दिया है।
अब कैसे हो स्टीव तुम?
ठीक हूँ भैया।
ज्यादा मार तो नहीं लगी?
नहीं भैया, वो शायद मुझे डराना चाहते हैं, इसलिए इतने में ही छोड़ दिया।
मगर ये सब हुआ कैसे?
आज दोपहर को जब हम लाल बस्ती से लौट रहे थे, तब दलालों के गुंडों ने हमारे ग्रुप पर हमला कर दिया। उन्होंने हमें चेतावनी भी दी कि तुम लोग जिस काम के पीछे पड़े हो उसे बंद कर दो, वरना इससे भी बुरा हाल होगा।
और उन्होंने इन लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी, और इन लड़कियों को भी कोठों पर बैठाने की धमकी दी है।
तुम लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई?
हाँ भैया, लिखाई है।
तो अब तुम्हारा क्या विचार है स्टीव?
तुम क्या सोच रहे हो कि स्टीव ने डर कर अपना विचार बदल दिया होगा? क्यों स्टीव?
नहीं भैया, न मैंने, न शीतल ने, और न ही हमारे ग्रुप ने इस मारपीट से डरकर अपना विचार बदला है, बल्कि इस मारपीट के बाद मीडिया और बाकी समाज सेवी संगठनों का साथ भी हमें मिल रहा है।
गुड, फिर आगे
ये अभियान और जोर शोर से चलेगा।
हम अब इसे आगे ही बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे।
किसी भी समाज सेवा के लिए ऐसा ही उत्साह होना चाहिए।
अब चाहे जो हो, इस सामाजिक बुराई और वेश्या उन्मूलन के लिए मेरा संघर्ष, मेरी जंग जारी है और जारी रहेगी।
जीजस तुम्हें जरूर सफलता देगा।
जंग जारी है। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे समता बोरेकर, नलिनी गहलोत, निर्विकार मूल्ले और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।